नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम सब ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, है ना, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, इसी को हम उपासना कहते हैं। पर कई बार लगता है कि भाई इसका पूरा लाभ क्यों नहीं मिल रहा। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक बहुत बहुत जरूरी उद्बोधन है, जीवन साधना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी। तो इसी में वो इस सवाल की गहराई में जाते हैं। आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे, समझेंगे कि जीवन को साधना मतलब खुद को बेहतर बनाना, ये सिर्फ अच्छी बात नहीं बल्कि अनिवार्य क्यों है। और हमारा स्रोत जाहिर है पूज्य गुरुदेव के यही विचार हैं।
हाँ बिल्कुल, पिछली बार हमने उपासना पर बात की थी, याद है कि कैसे भगवान के पास बैठने से उनके गुण हम में आते हैं, जैसे आग के पास बैठो तो गर्मी मिलती है। पूज्य गुरुदेव ने शबरी, गोपियां, राजा बलि जैसे भक्तों का उदाहरण भी दिया था, ये बताने के लिए कि भगवान के लिए भक्त कितना खास है।
हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक आप कह सकते हैं एक पेच है। पूज्य गुरुदेव बहुत साफ कहते हैं कि उपासना का पूरा फायदा चाहिए तो एक शर्त है पात्रता, यानी कि योग्यता, क्षमता का होना। और इसी क्षमता को, इसी योग्यता को बढ़ाने का नाम है साधना। तो क्या मतलब हुआ इसका कि बिना साधना के उपासना अधूरी रह जाती है?
एकदम सही पकड़ा आपने। पूज्य गुरुदेव के हिसाब से पात्रता के बिना उपासना ऐसी है जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है पर जमीन में गड्ढा ही नहीं है, तो पानी बरसेगा जरूर पर जमा कहाँ होगा, बह जाएगा। सूरज तो रोशनी दे रहा है पर देखने के लिए आंखें तो चाहिए ना।
हाँ बिल्कुल।
खाना सामने रखा है बढ़िया से बढ़िया, पर पेट खराब हो तो उसे पचाएगा कौन। तो चाहे दुनिया की बात हो या आध्यात्म की, सफलता पानी है तो पात्रता चाहिए ही चाहिए। और पात्रता का मतलब है वो अंदर की शक्ति, वो सफाई जो हमें भगवान की कृपा या दुनिया के मौकों को संभालने लायक बनाती है।
अच्छा, तो ये सिर्फ बाहरी डिग्री या डिप्लोमा जैसी चीज नहीं है, ये तो अंदर की तैयारी है। तो फिर ये साधना जिससे ये तैयारी होती है, ये असल में है क्या, कैसे करें इसे?
देखिए, साधना का सीधा सा मतलब है अपने जीवन को तराशना, परिष्कृत करना। हम सबके अंदर आप जानते हैं जन्मों जन्मों की कुछ आदतें होती हैं, कुछ पुरानी सोच होती हैं, नेगेटिव पैटर्न जिन्हें पूज्य गुरुदेव कुसंस्कार कहते हैं। तो साधना क्या है, इन गहरी बैठी हुई नेगेटिव आदतों को, सोच को पहचानना और उन्हें बदलने की कोशिश करना, यही है साधना।
अच्छा, मतलब जैसे कोई अनगढ़ पत्थर हो उसे धीरे धीरे तराश कर एक सुंदर मूर्ति बना देना, अपने विचारों को अच्छा बनाना, व्यवहार में अच्छा बनना, सज्जन बनना। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये पूरी तरह हमारे हाथ में है, हमारे अपने कंट्रोल में।
हाँ बिल्कुल, जैसे माली होता है ना, वो जंगली गुलाब के पौधे की कलम लगाता है, खाद पानी देता है, देखभाल करता है और उसे एक बेहतरीन फूल वाला पौधा बना देता है। बस वैसे ही हमें अपने जीवन को साधना है, अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को।
और इस साधना का असर कितना जबरदस्त हो सकता है, पूज्य गुरुदेव उदाहरण देते हैं ना, सपेरे का साधा हुआ सांप।
हाँ, या मदारी का साधा हुआ बंदर, या रीछ, सर्कस के वो शेर जिन्हें साध लिया जाता है। ये सब पहले जंगली थे पर साधना ने, ट्रेनिंग ने उन्हें इतना कीमती बना दिया कि वो अपने मालिक के लिए कमाते हैं, आजीविका चलाते हैं।
सही बात है।
तो साधना क्या करती है, वो व्यक्ति के अंदर जो छिपा हुआ पोटेंशियल है, जो संभावनाएं हैं, उन्हें जगाती है, उसका मूल्य बढ़ा देती है।
ये बात तो सोचने वाली है।
और इसका उल्टा भी उतना ही सच है, जैसे वो रामू वाला किस्सा है, वो लड़का जिसे भेड़ियों ने पाला था।
हाँ रामू
इंसान का बच्चा था पर क्योंकि इंसानी संस्कार नहीं मिले, साधना नहीं हुई, तो उसका व्यवहार तो जंगली जानवरों जैसा ही रहा। मतलब सिर्फ मनुष्य जन्म मिल जाना काफी नहीं है, उसे साधना से संवारना, निखारना पड़ता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव इतना जोर देते हैं कि ये सुधार का काम, ये संवारने का काम हमें खुद ही करना होगा, कोई दूसरा हमारे लिए नहीं कर सकता। उनका एक सूत्र है, आप ही अपने गुरु हैं। इसे आप आत्मदेव की उपासना भी कह सकते हैं, यानी अपने अंदर जो सबसे अच्छा है, जो सुपर कॉन्शियस है, उसे जगाना, अपनी आदतों को, अपनी सोच को, अपने नजरिए को लगातार बेहतर बनाते जाना।
सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है पर असल जिंदगी में अपनी वो गहरी जमी हुई आदतें, वो पुरानी सोच, उन्हें बदलना तो बहुत मुश्किल होता होगा।
मुश्किल तो है, यकीनन है, पर नामुमकिन नहीं। पूज्य गुरुदेव इसके लिए तीन रास्ते बताते हैं और तीनों को मिलाकर ही पूरी साधना बनती है। पहला है ज्ञान योग, सही क्या गलत क्या ये समझना, जीवन का मकसद क्या है ये जानना।
अच्छा।
दूसरा है कर्म योग, अपने जो फर्ज हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उन्हें पहचानना और उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाना, फल की चिंता किए बिना।
ठीक है।
और तीसरा है भक्ति योग, ईश्वर के लिए, और सिर्फ ईश्वर के लिए नहीं, सभी प्राणियों के लिए। दिल में प्रेम जगाना, सेवा का भाव जगाना, ये तीनों योग मिलकर हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं।
हाँ, जैसे मीराबाई ने पत्थर की मूर्ति में ही अपने गिरधर गोपाल को देख लिया, वो उनकी अपनी साधना थी, या एकलव्य ने मिट्टी के द्रोणाचार्य से ही सीख लिया, या रामकृष्ण परमहंस ने जड़ मूर्ति में मां काली को जिंदा कर दिया। ये सब उनकी अपनी अंदरूनी साधना, उनका अपना विश्वास, उनकी कोशिश का ही तो नतीजा था।
बिल्कुल, ये उदाहरण यही दिखाते हैं कि साधना में कितनी शक्ति है। जब व्यक्ति अपनी अंदर की कमियों को हटाता है, गुणों को बढ़ाता है, तो उसका व्यक्तित्व एक चुंबक जैसा बन जाता है।
तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि हमारा जीवन एक कल्प वृक्ष जैसा है, या पारस पत्थर जैसा। हम इसे अपनी साधना से, अपनी कोशिश से जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। बुराइयों को छोड़ना और अच्छाइयों को बढ़ाना, यही जो लगातार कोशिश है, यही जीवन साधना है।
और आखिर में पूज्य गुरुदेव एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं, जैसे फूल जब पूरी तरह खिल जाता है ना, तो भौरे और तितलियां उसे ढूंढते हुए अपने आप आ जाते हैं, बुलाना नहीं पड़ता।
हाँ,
ठीक वैसे ही जब इंसान साधना करके अपनी पात्रता बढ़ा लेता है, खुद को लायक बना लेता है, तो दुनिया का सहयोग, सफलता, भगवान की कृपा, सब अपने आप उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। साधना से सिद्धि मिलना, ये एक नेचुरल लॉ है, एक प्राकृतिक नियम। बस जरूरत है इसे अपने जीवन में आजमा कर देखने की।
तो इसका मतलब शायद यही है कि असली चमत्कार या कामयाबी के लिए हमें कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अपने अंदर, जो हम ईमानदारी से कोशिश करते हैं, उसी में छिपी है। सवाल बस यही है कि हम अपनी इस अनिवार्य साधना को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं।
ओम शांति।